14-7-66 की। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी, जब तक वो ज्ञान सागर सन्मुख ना आए तो ज्ञान कैसे समझाए।
They were in the middle of the first page of the Vani dated 14-7-1966. The topic being discussed was, unless that ocean of knowledge comes face to face, how will he explain the knowledge?
प्रेरणा से तो ज्ञान देते नहीं है, ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं।
He certainly doesn't give the knowledge through inspiration. These are the concepts to be understood nicely.
ऐसे नहीं कि 68 में ब्रह्मा के तन में आया और ज्ञान सुनाता रहा।
It isn't that he came in the body of Brahma in the year 1968 and kept narrating the knowledge.
69 में 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया और चला गया।
Then he left the body and went away on 18th January 1969.
और ज्ञान अपने आप किसी की समझ में आता रहे, ऐसे नहीं हो सकता।
And someone continues to understand the knowledge on his own, this isn't possible.
हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है।
No human being teaches us.
हमको बाबा पढ़ाते हैं।
बाबा टीचर्स अस।
और वो पढ़ाने वाला बाबा है बेहद का निराकार बाप।
एंड द बाबा हु टीचर्स अस इज द अनलिमिटेड इनकॉर्पोरियल फादर।
कोई हद का बाप नहीं है।
ही इजंट एनी लिमिटेड फादर।
वो धर्म पिताएं होते हैं, वो भी हद के बाप होते हैं।
दोज रिलीजियस फादर्स आर ऑल्सो द लिमिटेड फादर्स।
100-200 करोड़ धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं उनके बाप होते हैं।
दे आर द फादर्स ऑफ 1-2 बिलियन फॉलोअर्स ऑफ देयर रिलीजन।
इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये सब हद के बाप है।
इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आर ऑल लिमिटेड फादर्स।
बेहद मनुष्य आत्माओं का बाप है एक सुप्रीम सोल।
One supreme soul Shiv is the father of the unlimited human souls.
ये बात बच्चों को समझाई है कि साकार और निराकार दो बाप हर एक होते हैं।
This concept has been explained to the children. Everyone has two fathers, the corporeal and the incorporeal father.
निराकार बाप है बेहद का, वो है आत्माओं का बाप।
The unlimited incorporeal father is the father of the souls.
और साकार बाप है बेहद का, वो है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप।
And the unlimited corporeal father is the father of the entire human world.
एक रूहानी है और दूसरा जिस्मानी है।
One is spiritual and the other is physical.
रूहानी है शिव बाप।
The fathership is spiritual.
हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप।
He is the father of our point-like souls.
जिन्हें बिंदु आत्माओं की यादगार में यहाँ प्रकृति में टीका लगाते हैं।
They apply a tikka here between the eyebrows in the yadgar of the point-like souls.
ये आत्मा की टिकने की निशानी है।
This is the sign of the soul stabilizing.
बिंदी लगाते हैं।
They apply a bindi.
उन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल भी ज्योति बिंदु।
The father of those point-like souls, the supreme soul, is also a point of light.
वो रूहानी बाप है।
He is the spiritual father.
और वो रूहानी बाप जिसके जिस्म में प्रवेश करके रूहानी नॉलेज देते हैं, वो है जिस्मानी बाप।
एंड द बॉडी दैट द सुप्रीम सोल फादर एंटर्स एंड गिव्स द स्पिरिचुअल नॉलेज इज द बॉडी ही फादर।
रूहानी बाप ही आकर के रूहों को पावन बनाते हैं।
The spiritual father himself comes and purifies the souls.
जिस्मानी बाप पावन नहीं बनाता।
The bodily father doesn't purify them.
भले वो सारी मनुष्य सृष्टि का आदि है।
Though he is the beginning of the entire human world.
मनुष्यों का आदि पिता है।
He is the first father of the human beings.
एडम आदम आदि देव कहा जाता है।
He is called Adam, Adam or Adi Dev.
लेकिन वो पावन बनाने का कार्य नहीं करता। अगर किया होता तो पहले भी अनेक जन्म हुए हैं सृष्टि में, उन जन्मों में भी करता।
He doesn't perform the task of purifying the souls. Had he performed that task, he had had many births in the world earlier too. He would have performed it in those births as well.
नहीं।
No.
कलयुग के आखिरी जन्म में ही आके वो सुप्रीम सोल बाप पतितों को पावन बनाते। तुम जानते हो हम पावन से पतित, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं?
That supreme soul father comes only in this last birth of the iron age and purifies the impure ones. You know how you become impure from pure and pure from being impure.
कैसे बनते हैं?
How do you become that?
संघ के रंग में आने से पतित भी बनते हैं और संघ के रंग में आने से पावन भी बनते हैं।
यू बिकम इम्प्योर एज वेल एज प्योर बाय बीइंग कलर्ड बाय द कलर ऑफ कंपनी।
एक के संघ के रंग में आने से पावन बनते हैं।
यू बिकम प्योर बाय बीइंग कलर्ड बाय द कंपनी ऑफ द वन।
वो एक है ऊंचे ते ऊंचे सुप्रीम सोल सेव जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता।
That one is the highest of the high supreme soul Shiv who doesn't come in the cycle of birth and death.
Niranjan Nirakar कहा जाता है।
He is called Niranjan Nirakar. Niranjan means devoid of sins. Nirakar means incorporeal.
Akarta Abhokta कहा जाता है।
He is called Akarta and Abhokta.
वो जब साकार सृष्टि में आकर के साकार तन में प्रवेश करता है और बच्चों के सन्मुख होता है तो उसके संग के रंग से हम आत्माएं पावन बनती
है। When he comes in the corporeal world, enters a corporeal body and is face to face with the children, it is then that the souls become pure through the color of his company.
बुद्धि का संग लगता है।
We are colored by the company of his intellect.
बुद्धि है प्रधान।
The intellect is the most important thing.
इंद्रियां प्रधान नहीं है।
The indriya aren't the most important.
शरीर के और अंग प्रधान नहीं है।
Other parts of the body aren't the most important.
तो बुद्धि से याद करने की बात पर विशेष जोर दिया जाता है। लेकिन बुद्धि से भी याद कब आती है? जबकि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है।
So, special attention is paid on remembering the father through the intellect. However, when do you remember something through your intellect? It is when you have experienced it through your indriya.
जैसे आँख से कोई चीज देखी जाती है, तो याद आती है।
For example, when you see something through your eyes, you remember it.
तो आँख भी तो इंद्रिय है ना?
So, the eyes are also an indriya, aren't they?
ऐसे ही और भी जो भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा जो संग होता है उस संग के रंग की छाप लग जाती है।
इन द सेम वे एज रिगार्ड्स ऑल द अदर इंद्रिया द कंपनी दैट यू हैव थ्रू दोज इंद्रिया द इम्प्रेशन ऑफ द कलर ऑफ दैट कंपनी इज इम्प्रिंटेड ऑन यू
और वो स्मृति में आती रहती
है। एंड इट कीप्स कमिंग इन योर मेमोरी।
सुप्रीम सोल बाप तो ऊंचे के ऊंचे है।
द सुप्रीम सोल फादर इज सर्टनली द हाईएस्ट ऑफ द हाई।
उसकी छाप तो जरूर करारी लगती होगी।
हिज इम्प्रेशन वुड डेफिनेटली बी स्ट्रॉन्ग।
और मनुष्य आत्माएं तो नंबर वार पुरुषार्थ संसार शक्ति वाली है.
अदर ह्यूमन सोल्स आर सर्टेनली द वंस विद नंबर वाइज पावर अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ.
वो तो सर्वशक्ति वाले.
ही इज इन फैक्ट ऑलमाइटी.
तो पतित से पावन ऐसे बनते हैं. कैसे?
सो यू बिकम प्योर फ्रॉम बीइंग इम्प्योर दिस वे. हाउ?
संग के रंग से.
थ्रू द कलर ऑफ हिज कंपनी.
और फिर जो सत्युग त्रेता में पावन देवताएं थे रामकृष्ण के राज्य में, वो अब कलयुग के अंत में आकर के जन्म लेते लेते पतित कैसे बने?
एंड दोज हु वर द प्योर डीटीज इन द गोल्डन एंड द सिल्वर एज, दैट इज द किंगडम ऑफ राम एंड कृष्ण, हाउ हैव दे बिकम इम्प्योर नाउ व्हाइल बीइंग बोर्न रिपीटेडली बाय द एंड ऑफ द आयरन एज?
सारे भारतवासी पतित कैसे बन गए?
हाउ डिड ऑल द भारतवासीज बिकम इम्प्योर?
अनेकों के संग के रंग में आकर के पतित बन गए.
दे बिकेम इम्प्योर बाय बीइंग कलर्ड बाय द कंपनी ऑफ मेनी सोल्स.
इब्राहिम और उनके फॉलोअर्स आए, इस्लाम धर्म स्थापन किया.
इब्राहिम एंड हिज फॉलोअर्स केम एंड एस्टैब्लिश्ड इस्लाम.
क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया.
Christ came and established the Christian religion.
Buddha
came, Muhammad came.
जो भी दूसरे दूसरे धर्मों के धर्म पिताएं हैं और उनके फॉलोअर्स आए, उनके संग के रंग में आने से भारतवासी कन्वर्ट होते गए.
All the religious fathers and their followers of the other religions who came, the Bharatvasis continued to convert by being colored by their company.
उनके संग में आने से कन्वर्ट हुए और पतित बनते चले.
They converted because of being colored by their company and continued to become impure.
आज हिंदुओं की संख्या बहुत कम रह गई.
Today, the population of the Hindus is very small.
हिंदू धर्म सबसे पुराना होते हुए भी संख्या कम रह गई.
Despite the Hindu religion being the oldest, the population has declined.
क्यों?
Why?
क्योंकि दूसरों के संग के रंग में प्रभाव से प्रभावित होने लगे.
It is because they started being influenced by the color of others' company.
अभी लास्ट में.
Now at the end.
जब सारे ही धर्म नीचे गिर जाते हैं.
When all the religions fall.
धर्म के नाम पर दतिंग हो जाता है.
When there is blind faith in the name of religion,
तब सुप्रीम सोल बाप वही आदि सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए आता है.
The supreme soul father comes to establish the same ancient deity religion.
और आकर के सारी सृष्टि को पति से पावन बनाता है.
In addition, he comes and purifies the entire world.
पतित किसे कहा जाता है?
Who is called impure?
पतित कहा जाता है जो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी होते जाते हैं.
The ones who continue to become lustful, wrathful, greedy, the ones with attachment, egoistic and vicious are called impure.
विकारी होते जाते हैं. देवताएं निर्विकारी थे.
The deities were wifeless.
कहा भी जाता है सर्वण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम.
It is also said that they were complete with all the virtues, complete with 16 celestial degrees, completely non-violent and Maryada Purushottam.
तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम सेवा आकर के बनाते, सोलह कला संपूर्ण आकर के बनाते, निर्विकारी आकर के बनाते.
So, Shiv comes and makes us that Maryada Purushottam, complete with 16 celestial degrees and wiseness.
मनुष्य को विकारी कहा जाता है.
Human beings are called vicious.
नर और नारी आज विकारी हो चुके हैं.
today, men and women have become vicious.
कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी हो चुके.
They have become lustful, wrathful, greedy, the ones with attachment and egoistic.
उनको निर्विकारी आकर के बनाने का कार्य परमात्मा बाप का है.
It is the task of the Supreme Soul, the Father, to come and make them viceless.
मनुष्य आत्मा निर्विकारी नहीं बना सकती.
The human souls can't make others viceless.
मनुष्य को देवता बनाने का कार्य मनुष्य नहीं कर सकता.
A human being can't perform the task of making human beings into deities.
ये तो भगवान का कार्य है.
It is in fact God's task.
भगवान ही आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं.
God himself comes and makes human beings into deities.
इतने बड़े बड़े महात्माएं आए, धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, गांधी जी आए, दुनिया नीचे गिरती चली गई.
So many great souls and religious fathers like Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak came, Vivekanand and Gandhi ji came, but the world continued to degrade.
क्यों गिरती चली गई?
Why did it continue to degrade?
क्योंकि मनुष्य आत्माएं खुद भी नीचे गिरती है और अपने संग के रंग से दूसरों को भी नीचे गिराती.
It is because the human souls themselves degrade as well as make others degrade because of the color of their company.
एक सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव ही ऐसा है जो आत्माओं को ऊपर उठाता है.
There is only the Almighty Supreme Father, Supreme Soul Shiv who uplifts the souls.
पतित आत्माओं को पावन बनाता है.
He purifies the impure souls.
मनुष्य से देवता बनाता है.
He makes them into deities from human beings.
इसलिए गीता में जो ज्ञान दिया गया है वो नर अर्जुन को नारायण बनाने के लिए दिया गया है और नारी द्रौपदी को नारायणी बनाने के लिए दिया गया.
This is why the knowledge mentioned in the Gita is to make man Arjun into Narayan and woman Draupadi into Narayani.
ये मनुष्य से देवता बनाने की मशीनरी और कोई के पास नहीं सिवाय सुप्रीम सोल बाप के.
No one else except the Supreme Soul, the Father, has this machinery of making human beings into deities.
मनुष्य मनुष्य को डॉक्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, वकील बनावेंगे.
A human being will make other human beings into a doctor, an engineer, a lawyer.
पढ़ाई पढ़ाकर.
By teaching them the studies.
लेकिन मनुष्य को देवता और जन्म जन्मांतर का राजा सिर्फ भगवान ही आकर के राजयोग से बनाते हैं.
However, only God comes and makes human beings into deities and kings for many births through Rajyog.
नहीं तो हिस्ट्री में इतने बड़े छोटे राजाएं हुए, महाराजाएं हुए, इनको राजा ही करना किसने सिखाया?
Otherwise, there have been so many big and small kings and emperors in the history. Who taught them to rule?
कब सिखाया?
When did he teach them?
जरूर कोई ने तो राजा ही करना सिखाया होगा.
Definitely, someone would have taught them to rule.
तो यही कलयुग का अंत का समय है, जबकि इस दुनिया का ध्वंस होने वाला है.
So, it is the very period of the end of the Iron Age when this world is going to be destroyed.
एटम बम बन चुके हैं.
एटम बॉम्ब्स हैव बीन प्रिपेयर्ड.
हर हर बम बम का नारा लगने वाला है.
The slogan हर हर बम बम is about to be raised.
ऐसी स्थिति जब इस दुनिया की हो जाती है तो परमात्मा बाप आकर के मनुष्य को देवता बनाते.
When the world reaches such a stage, the Supreme Soul Father comes and makes human beings into deities.
कौन से टाइम पर?
When?
जब सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य हो जाता है।
इट इज व्हेन देयर इज डेमोक्रेसी इन द एंटायर वर्ल्ड।
प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य।
देयर इज द रूल ऑफ सब्जेक्ट्स ओवर द सब्जेक्ट्स।
राजाओं का राज्य खलास हो जाता है। जो ईश्वर की पढ़ाई पढ़ाई हुई थी वो पढ़ाई का उत्कर्ष खत्म हो जाता है।
When the rule of kings ends, when the eminence of the study taught by God ends,
तब परमात्मा बाप आकर के फिर से राजाई की स्थापना करते हैं।
It is then that the supreme soul father comes and establishes the kingship again.
दुनिया में एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, एक मत होगा।
There will be one religion, one kingdom, one language and one opinion in the world.
ये भगवान की स्थापना की हुई दुनिया होगी।
This would be the world established by God.
भगवान की बनाई हुई दुनिया में एक मत, एक राज्य, एक भाषा होने के कारण सुखी सुख होगा।
Because of one opinion, one kingdom and one language in the world created by God, there will be only happiness.
वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा।
There won't be the name and trace of sorrow there.
इसलिए उस दुनिया का नाम है सत्ययुग।
This is why the name of that world is Satyug, meaning golden age.
काय का युग?
The age of what?
सत्य का युग।
The age of Sat, meaning truth.
असत्य का नाम निशान नहीं।
There won't be the name and trace of falsity.
आज की दुनिया में झूठ ही झूठ।
In today's world, there is only falsity.
कोई ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं होगी जो तन से, मन से, धन से, समय, संपर्कियों, संबंधियों से झूठ कामना करता हो।
There won't be a single human soul who doesn't do anything false through his body, mind, wealth, time, connection and relationships.
कोई मनुष्य छाती ठोक कर नहीं कह सकता कि हमने कभी झूठ नहीं बोला है।
No human being can say confidently, I have never lied.
क्योंकि झूठ की दुनिया है।
जग माया नहीं।
राजाएं जो भी है वो सब पतित हो चुकी।
It is because this is the world of falsity. All the kings have become impure.
जब राजाएं ही पतित हो चुके जो भगवान की बनाई हुई रचना थी तो यथा राजा तथा प्रजा, सारी प्रजा भ्रष्ट हो गई।
When the kings who were the creation of God themselves have become impure, as is the king, so will be the subjects. All the subjects have become corrupt.
और अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है।
In fact, now there is the rule of subjects over the subjects.
तो बाप कहते हैं, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि पतित से पावन कैसे बनते हैं और पावन से पतित कैसे बनते हैं।
So the father says, now it sits in your intellect, how you become pure from impure and impure from pure.
तुम्हारे सामने चित्र भी है।
There is also a picture in front of you.
जो चित्र है वो चरित्र की यादगार है।
Pictures are the yadgar of the acts performed.
देवताओं ने जो श्रेष्ठ चरित्र बजाए हैं उनके चित्रों में दिखाए गए हैं।
The elevated actions which the deities have performed have been depicted in their pictures.
तो बाप राय देते हैं घड़ी घड़ी इस चक्कर के सामने जाए बैठो।
So the father gives you the advice, go and sit in front of the cycle repeatedly.
ये सृष्टि का चक्कर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग।
This is the world cycle, the golden age, the silver age, the copper age and the iron age.
जो सतिया में दिखाया जाता है।
They are shown in the sign of the swastika.
उसको कहते हैं स्वास्तिक का चिन्ह।
is called the sign of swastika.
चार भुजाएं चार युगों की सूचक है.
The four arms signify the four ages.
एक के बाद एक युग फिरता जाता है.
One age comes after the other.
सत्युग में 16 कला संपूर्ण होते हैं.
Deities are complete with 16 celestial degrees in the golden age.
त्रेता में 14 कलाएं रह जाती हैं. द्वापर में 8 कलाएं रह जाती हैं.
They are left with 14 celestial degrees in the silver age and 8 celestial degrees in the copper age.
और कलयुग अंत में कलाहीन मनुष्य रह जाता
है. Then the human being becomes devoid of celestial degrees in the end of the iron age.
सारी कला काया चट्ट हो जाती है.
All the celestial degrees diminish.
तो ये चक्कर बुद्धि में फिराना चाहिए.
So you should rotate the cycle in your intellect.
कि हम कला काया चट्ट कैसे बन गए.
How we became the ones devoid of celestial degrees.
जो सुखदाई देवता थे सतयुग में वो अब दुखदाई असुर कैसे बन गए. कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं बची जो तन से मन से और धन से दूसरों को दुख न देती हो.
How we who were joy giving deities in the golden age became sorrow giving demons now. There is no such human soul who doesn't give sorrow to others through his body, mind and wealth.
तो इस घड़ी घड़ी ये जो चार युगों का चक्कर है इसके सामने जाकर बैठना चाहिए.
So, you should go and sit in front of the cycle of four ages repeatedly.
तो सारा ज्ञान बुद्धि में आता रहेगा.
Then the entire knowledge will continue to come in your intellect.
हम अभी संगम पर बैठे हैं.
We are sitting in the confluence age now.
कलयुग खलास होने वाला है और सतयुग आने वाला है.
The iron age is going to be destroyed and the golden age is going to arise.
अगर हमें अपने को परिवर्तित करना है तो हमारे पीछे ढेर परिवर्तन होने वाली आत्माएं आवेंगी.
If we have to transform ourselves, many souls who have to transform themselves will come after us.
क्योंकि हम भी इस धरती के चैतन्य सितारे हैं.
It is because we are also the living stars of this earth.
वो तो आसमान के जड़ सितारे होते हैं. कहते एक एक सितारे में दुनिया होती है.
Those are the physical stars of the sky. It is said that every star has a world enclosed in it.
वो तो झूठी बात है.
That is certainly a false idea.
उन सितारों में दुनिया नहीं होती है. हम आत्मा रूपी सितारे जो हैं, उनमें एक एक दुनिया बसी हुई है.
Those stars don't have a world of their own. We star-like souls have a world enclosed in us.
आत्मा रूपी सितारा 84 का चक्र चलाता है.
A star-like soul passes through the cycle of 84 births.
84 के चक्र में घूमता है तो अनेक आत्माओं मनुष्य आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आता है. वो उसकी दुनिया हो जाती है.
When it passes through the cycle of 84 births, it comes in contact and connection of many souls, human souls. They become its world.
अभी हम अपनी दुनिया भगवान की श्रीमत पर बनाए रहे.
Now we are creating our world according to God's श्रीमत.
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया भी बना सकते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए दुखी दुनिया भी बना सकते हैं.
We can create the most elevated as well as the sorrowful world for ourselves for many births.
भगवान बाप आकर के हमको ऐसी तरकीब सिखाए रहे हैं कि हम अनेक जन्मों के लिए सुखी रहे.
God the Father comes and is teaching us such a technique so that we can stay happy for many births.
अनेक जन्मों की सुख जीवन मुक्ति भोगे.
We can experience happiness, जीवन मुक्ति for many births.
जीवन में भी रहे दुख न भोगे सुख भोगे.
And not suffer sorrow but experience happiness despite being alive.
तो वो तब होगा जब बुद्धि में ये बात बैठे कि हम संगम पर.
it will happen when this concept sits in our intellect that we are in the confluence age.
अभी कलयुग का अंत होने वाला है और सत्युग की आदि होने वाली.
Now the iron age is about to end and the golden age is about to begin.
दोनों का संगम है.
It is the confluence of both.
और सारी दुनिया तो अपने को कलयुग में समझती है.
The rest of the entire world considers itself to be in the iron age.
वो समझते हैं अभी कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है.
They think 40,000 years of the iron age are still left.
अरे 100 साल पहले तो छोड़ो, 68 साल पहले एटम बमों का नाम निशान नहीं था.
अरे forget the last 100 years. There wasn't even the name and trace of the atom bombs 68 years ago.
मनुष्य की बुद्धि में ही नहीं था कोई ऐसी चीज हो सकती है विनाशकारी.
It wasn't in the intellect of the human beings at all that there can also be such a destructive thing.
भगवान इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि के विनाश की चीज भी तैयार कराता है.
When God comes in this world, He also has the material for the destruction of this world prepared.
क्योंकि ये तमो प्रधान दुनिया हो चुकी है.
It is because this world has become tamo pradhan.
और नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए वो आकर के ज्ञान भी देता है.
And he also comes and gives the knowledge to establish the new world.
जो आत्माएं ज्ञान लेती है अपने जीवन में धारण करती है वो शूद्र से देवता, शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं.
The souls who take the knowledge, who assimilate it in their life, become Brahmins from Shudras and then deities from Brahmins.
अभी ये मशीनरी चालू है.
Now this machinery is in progress.
कलयुग को तो घोर अंधियारा कहा जाता है.
In fact, the Iron Age is said to be pitch dark.
अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं.
Human beings keep suffering blows in darkness.
कहीं किसी ने ठोकर मारी, कहीं किसी ने ठोकर मारी.
Someone hit somewhere, someone else hit somewhere else.
ठोकर खाना अर्थात धोखा खाना.
To suffer blows means to be deceived.
सब मनुष्य आत्माएं धोखे खाती रहती है.
All the human souls keep being deceived.
क्योंकि सब धोखेबाज हो गए.
It is because everyone has become a deceiver.
अभी तुमको रोशनी मिली.
Now you have received the light.
काहे की रोशनी मिली है?
What light have you received?
ज्ञान सूर्य आकर के जो ज्ञान की रोशनी दे रहा है वो तुमको मिली है.
It is you who have received the light of knowledge that the sun of knowledge is giving after coming.
और सारी मनुष्य सृष्टि अंधियारे में.
The rest of the entire human world is in darkness.
सत्युग में ये तुमको ज्ञान नहीं होता है, न कोई देने वाला होता है.
You don't have this knowledge in the golden age, and there isn't anyone who gives it either.
क्यों?
Why?
क्योंकि वहाँ तो देवताएं सुखी होते हैं.
It is because the deities are happy there.
सुख में ज्ञान की दरकार नहीं.
You don't need knowledge and happiness.
भगवान की याद करने की दरकार नहीं.
You needn't have to remember God.
कहते भी हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई.
It is also said, everyone remembers God in times of sorrow, no one remembers Him in times of happiness.
इस कलयुग के अंत में ही आकर के दुख पड़ता है.
There is sorrow at the very end of this iron age.
हर मनुष्य आत्मा दुखी हो जाती है.
Every human soul becomes sorrowful.
तब भगवान आकर के दुखी आत्माओं को सुखी बनाने के लिए ज्ञान की रोशनी देते हैं.
Then God comes and gives the light of knowledge to make the sorrowful souls happy.
वो ज्ञान की रोशनी पहले मन बुद्धि में आती है.
That light of knowledge is lit in the mind and intellect first.
तन नहीं सुखी बन जाता है, पहले मन सुखी बने।
द बॉडी डजंट बिकम हैप्पी फर्स्ट, द माइंड शुड बिकम हैप्पी।
क्योंकि मन है बीज।
इट इज बिकॉज द माइंड इज द सीड।
मन के संकल्प है बीज।
द थॉट्स ऑफ द माइंड आर द सीड।
जब बीज सुधरता है तो सारा वृक्ष सुधर जाता है।
When the seed reforms, the entire tree reforms.
ये भी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वृक्ष है।
This is also the human world tree.
इस वृक्ष का बीज आदि पुरुष ब्रह्मा है।
ब्रह्मा इज द सीड, द फर्स्ट मैन ऑफ दिस ट्री।
जिसे कहते हैं आदिदेव ब्रह्मा।
He is called Adidev Brahma. Adidev means the first deity.
शास्त्रों में लिखा हुआ है।
It is written in the scriptures.
ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई।
That the world was created through Brahma's thoughts.
तो सृष्टि को स्थूल थोड़े रची जाती है पहले पहले।
So the physical world isn't created first.
पहले पहले संकल्पों से ही हर मनुष्य आत्मा अपने लिए अपनी सृष्टि रचती है।
फर्स्ट एवरी ह्यूमन सोल क्रिएट्स हिज वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ थ्रू हिज वेरी थॉट्स।
अभी भगवान आकर के हमको ये बात सिखाई रहे कि तुम अपने अनेक जन्मों के लिए कैसे अपनी सृष्टि बना सकते हो।
नाउ गॉड हैज कम एंड इज टीचिंग अस एज टू हाउ वी कुड क्रिएट अवर वर्ल्ड फॉर मेनी बर्थ्स।
चाहो तो अनेक जन्मों के लिए सुखी सृष्टि बनाओ अपने लिए, और चाहो तो दुखी सृष्टि बनाओ।
यू मे ईदर क्रिएट अ हैप्पी वर्ल्ड फॉर मेनी बर्थ्स और अ सॉरोफुल वर्ल्ड फॉर योरसेल्फ।
कोई आत्मा अनेक जन्म शांति भोगती है।
सम सोल्स एक्सपीरियंस पीस फॉर मेनी बर्थ्स।
कोई आत्मा अनेक जन्म सुख भोगती है।
सम सोल्स एक्सपीरियंस हैप्पीनेस फॉर मेनी बर्थ्स।
और कोई आत्मा अनेक जन्म दुख भोगती है।
And some souls suffer sorrow for many births.
ये अंतर क्यों पड़ता है?
Why is there this difference?
कोई तो कारण होगा।
There certainly must be a reason.
ये अंतर अभी की बात है।
This difference is connected to the present time.
अभी परमात्मा बाप आकर के जो ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान की गहराइयों में जो उतरते हैं, मुरली पर ध्यान देते हैं, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार उन जिनका हो जाता है, वो अनेक जन्मों की सुख की प्रारब्ध ले लेते।
नाउ द नॉलेज दैट द सुप्रीम सोल फादर इज गिविंग आफ्टर कमिंग, दोज हु गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट नॉलेज, हु पे अटेंशन टू द मुरलीज, हु हैव लव फॉर द मुरली मीनिंग लव फॉर द मुरलीधर, दे रिसीव द अटेनमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर मेनी बर्थ्स।
इसलिए भगवान को सुखदाता कहा जाता है, दुखदाता भगवान को नहीं कहा जाता।
दिस इज why गॉड इज कॉल्ड द गिवर ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉट द गिवर ऑफ सोरो।
दुखदाई रावण को कहा जाता है।
रावण इज कॉल्ड द गिवर ऑफ सोरो।
रावण है रुलाने वाला, राम है हंसाने वाला, रमण कराने वाला, खेल खिलाने वाला।
रावण इज द वन हु मेक्स अदर्स क्राई, वेयर एज राम इज द वन हु मेक्स अदर्स लाफ डिलाइट एंड रिजॉइस।
तो कहां राम और कहां रावण?
सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन राम एंड रावण।
अभी दोनों है।
बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट नाउ।
राम का भी संग मिलता है।
यू हैव द कंपनी ऑफ राम एज वेल।
लेना चाहे तो कोई भी ले सकता है।
एनीवन कैन टेक हिज कंपनी इफ ही वांट्स।
और रावण का भी अभी संग मिलता है।
इन एडिशन यू आल्सो हैव रावण्स कंपनी नाउ।
अंतर क्या होता है? रावण को अनेक सिर दिखाए जाते हैं और राम को एक सिर दिखाया जाता है।
व्हाट इज द डिफरेंस? रावण इज शोन विद मेनी हेड्स एंड राम इज शोन विद वन हेड।
सिर का मतलब क्या हुआ?
What does head mean?
बुद्धि, मत,
intellect, opinion।
रावण अनेक प्रकार की मत देता है.
रावण गिव्स मेनी काइंड्स ऑफ ओपिनियंस.
कोई क्रिश्चियन मत देते हैं, कोई इस्लामी मत देते हैं.
सम गिव द ओपिनियंस ऑफ द क्रिश्चियंस, सम गिव द ओपिनियंस ऑफ इस्लाम.
कोई बौद्धियों की मत देते हैं.
सम गिव द ओपिनियंस ऑफ द बुद्धिस्ट.
कोई मोहम्मद की मत देते हैं, कोई सन्यासियों की मत देते हैं.
सम गिव द ओपिनियंस ऑफ मोहम्मद, सम गिव द ओपिनियंस ऑफ द सन्यासी.
ये अनेक प्रकार की मतें 2500 साल से, जब से दुनिया की हिस्ट्री मिल रही है तब से ये रावण की मतें मिल रही है.
यू आर रिसीविंग दीज वेरियस काइंड ऑफ ओपिनियंस, द ओपिनियंस ऑफ रावण फॉर 2500 ईयर्स. एवर सिंस यू कैन फाइंड द वर्ल्ड हिस्ट्री.
रावण की मत पर चलते चलते दुनिया गड्ढे में चली गई.
The world has fallen into the ditch by following Ravan's opinion.
अभी एक बाप आया हुआ.
Now the one father has come.
वो सिखाते हैं कि अब अनेकों की मत पर नहीं चलना है.
He teaches, now you don't have to follow the opinions of many.
एक की मत पर चलने से राम राज्य होगा और अनेकों की मत पर चलने से रावण राज्य हो जाता है.
There will be Ram's kingdom if you follow the directions of the one, and there is Ravan's kingdom when you follow the opinions of many.
एक कौन?
Who is the one?
एक वह जो ऊंचे से ऊंचे बाप है.
The highest of the high father is the one.
इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, मोहम्मद, शंकराचार्य, ये धर्म पिताएं तो हैं, लेकिन ऊंचे से ऊंचे नहीं है.
Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak, Muhammad and Shankaracharya are certainly religious fathers, but they aren't the highest of the high.
ऊंचते ऊंच वो है जिसको क्राइस्ट भी बाप मानता है, मोहम्मद भी बाप मानता है.
The one whom Christ as well as Muhammad consider to be their father is the highest of the high.
सब धर्म पिताएं उसकी तरफ इशारा करते हैं. ऊपर वाला.
ऑल द रिलीजियस फादर्स इंडिकेट हिम एज द वन अबव.
वो ऊंचे से ऊंचा करता रहे.
ही इज द वन हु परफॉर्म्स द हाईएस्ट टास्क.
क्या ऊंचे से ऊंचा करता है?
व्हाट हाईएस्ट टास्क डज ही परफॉर्म?
नरक को स्वर्ग बनाता है.
ही ट्रांसफॉर्म्स हेल इनटू हेवन.
ये करिश्मा कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका.
नो रिलीजियस फादर कुड परफॉर्म दिस मिरेकल.
कितना भी बड़े से बड़ा दुनिया का धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, नरक को स्वर्ग किसी ने नहीं बनाया.
नो मैटर हाउ सिग्निफिकेंट अ रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इट इज, वेदर इट इज द क्रिश्चियन रिलीजन, इस्लाम और द बुद्धिस्ट रिलीजन, नन ऑफ देम ट्रांसफॉर्म हेल इनटू हेवन.
बजाय नरक को स्वर्ग बनाने के, खुद भी नरक में गिरते गए और सारी दुनिया को भी नरक में ले गए.
इंस्टेड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इट, दे देमसेल्व्स केप्ट फॉलिंग इन हेल एंड टुक द एंटायर वर्ल्ड आल्सो टुवर्ड्स हेल.
अभी वो ऊंचे से ऊंचा एक आया हुआ है.
नाउ दैट वन हु इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई हैज कम.
वो एक ही मंत्र देता है.
ही गिव्स अ सिंगल मंत्र.
माम एकम याद करो.
Remember me alone.
कोई दूजम को याद नहीं करो.
Don't remember anyone else.
मुझे एक को याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए स्वर्ग के वासी बनेंगे, सुख के वासी बनेंगे.
If you remember me, the one, you will become the residents of heaven, the residents of happiness for many births.
मैं जो सुनाता हूँ वही सुनो.
लिसन ओनली टू व्हाट आई नरेट.
और कोई की बात मत सुनो.
डोंट लिसन टू एनीवन एल्सेस वर्ड्स.
अनेकों से अगर ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा.
इफ यू लिसन टू द नॉलेज फ्रॉम मेनी, द नॉलेज विल बिकम अडल्ट्रेटेड.
अभी विविचारी दुनिया खलास होने वाली है.
Now the adulterous world is going to be destroyed.
घर घर में भी विचार फैल गया है.
Adultery has spread in every house.
आज से 500 साल पहले ही तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया था. वै वर्ण संकर सब है.
तुलसीदास रोट इन द रामायण 5000 years ago itself. भय वर्ण संकर सब है, मीनिंग एवरीवन हैज मिक्स्ड ब्लड.
कोई ब्राह्मण नहीं बचा, सब वर्ण संकर हो गए.
नो ब्राह्मण इज लेफ्ट, एवरीवन हैज मिक्स्ड ब्लड.
जब सारे ही 500 साल पहले ही वर्ण संकर हो गए तो आज की हालत तो बहुत खराब है.
व्हेन एवरीवन हैड मिक्स्ड ब्लड 500 years ago itself, today's condition is certainly worse.
इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में वैश्यालय.
This is why Baba says there is brothel in every house.
अब इस वैश्याले को शिवालय बनाने के लिए शिव आया हुआ है.
Now, Shiv has come to make this brothel into शिवालय, meaning Shiv's temple.
यादगार भी बनी हुई है.
The yadgar is also made.
शिव का मंदिर है.
There is the temple of Shiv.
शिव के मंदिर में बीच में शिवलिंग होता है, आजू बाजू में देवताएं होते हैं.
In Shiv's temple, the Shivling is in the center and the deities are around it.
सभी देवताओं की मूर्तियाँ शिवलिंग के चारों ओर रखी रहती हैं.
The idols of all the deities are placed around the Shivling.
मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति होती है.
The idol of Shankar is placed in the main position.
हनुमान की मूर्ति होती है.
Then there is the idol of Hanuman.
इससे साबित होता है कि वो सब देवताएं एक की पूजा कर रहे हैं.
This proves that all those deities are worshipping the one.
उसको कहा जाता है शिवालय.
It is called शिवालय.
जहाँ एक की चिरौरी की जाती है, एक की महिमा की जाती है, एक की पूजा की जाती है, एक से ही दृष्टि ली जाती है, वो है शिवालय.
The place where people serve, pray, worship and exchange glances with the one alone is called शिवालय.
और जहाँ वैश्या बैठ करके जिस आलय जिस घर में अनेकों की चिरौरी करती है, अनेकों की मक्खनबाजी करती है, अनेकों से इंद्रियों का भोग करती है, उसको कहा जाता है वैश्यालय.
And the alay, that is house, where a prostitute sits and serves many, flatters many, and seeks the pleasure of Indriya with many, is called a brothel.
आज ये दुनिया वैश्याले बन चुकी.
Today, this world has become a brothel.
इस वैश्याले को शिवालय बनाने के लिए शिव आया हुआ.
Shiv has come to make this brothel into शिवालय.
तो सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे.
So, the golden age won't be called beneficial.
युग सतयुग कल्याणकारी युग नहीं है, कल्याण करने वाला युग नहीं.
The golden age isn't a beneficial age. It isn't the age that brings about benefit to others.
है तो वहाँ कल्याण ही कल्याण, लेकिन कल्याण करता नहीं है.
There is benefit and only benefit there, but it doesn't bring about benefit to others.
कौन सा युग कल्याण करता है?
Which age brings benefit to others?
संगम युग कल्याण करता है.
The confluence age brings benefit to others.
क्योंकि सतयुग में भगवान बाप नहीं आता.
It is because God the Father doesn't come in the golden age.
वहाँ तो देवताएं होती हैं.
In fact, the deities are present there.
वो तो अपना कल्याण नहीं करते हैं, उनको तो कल्याणकारी दुनिया रहने के लिए मिली हुई है.
They don't bring benefit to themselves. They have certainly received the age full of benefit to live.
कल्याणकारी युग है संगम.
The confluence age is the beneficial age.
और वो एक ही बार होता है.
And it is present just once.
अनेक बार नहीं होता.
It isn't present many a times.
कब होता है?
When is it present?
कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में.
at the end of the Iron Age and the beginning of the Golden Age.
लोग कहते हैं अभी तो कलयुग का अंत नहीं है.
People say that it is in the end of the Iron Age now.
कलयुग का अंत नहीं है तो ये एटम बम काहे के लिए बने हुए.
When it is in the end of the Iron Age, why have these atom bombs been prepared?
क्या हमारे घर की सजावट के लिए बने हुए हैं?
Have they been prepared for the decoration of our house?
नहीं.
No.
जो चीज बनी है उसका उपयोग जरूर होगा.
The thing which is prepared will certainly be used.
आज नहीं तो कल होगा.
If not today, they will be used tomorrow.
क्यों उपयोग रुका हुआ है?
Why aren't they being used now?
इसलिए रुका हुआ है कि भगवान जो नई सृष्टि स्थापन करने आया है, नई दुनिया का नया संगठन रूपी किला बनाने आया है, वो पांडवों का किला जब तक तैयार नहीं हो जाता है.
They aren't being used now because unless the new world that God has come to establish, the new fort-like gathering of the new world that He has come to form, unless that fort of the Pandavas is ready.
ऐसा किला जिसमें कोई भी विकारी पांव रख न सके.
It would be such a fort where no vicious person could step in.
अभी क्या होता है?
What happens now?
किला बनता है. कोई भिखारी अपने बुद्धिरूपी पांव घुसाई देता है.
The fort is made, but a vicious person places his leg-like intellect in it.
तो किला बनते बनते टूट जाता है.
Then the fort breaks while in the process of being made.
Unity, purity से बनती है.
Unity is formed through purity.
प्योरिटी चिरस्थाई नहीं तो यूनिटी भी चिरस्थाई नहीं. यूनिटी माने संगठन.
इफ प्योरिटी इज इन लॉन्ग लास्टिंग, यूनिटी वोंट बी लॉन्ग लास्टिंग ईदर. यूनिटी मीन्स गैदरिंग.
अभी बाप कहते हैं वो पांडवों का किला तैयार होने जा रहा है.
नाउ द फादर सेज दैट फोर्ट ऑफ द पांडव्स इज गोइंग टू बी रेडी.
ऐसा किला बन जाएगा जिसमें एक भी दुर्योधन दुशासन पांव नहीं रख सकेगा.
सच अ फोर्ट विल बिकम रेडी वेयर नो दुर्योधन दुशासन वुड बी एबल टू स्टेप इन.
इम्प्योरिटी प्रूफ किला हो जाएगा.
इट वुड बी एन इम्प्योरिटी प्रूफ फोर्ट.
जब ऐसी स्थापना हो जाएगी तब एटम बमों का विनाश शुरू होगा.
व्हेन सच एस्टैब्लिशमेंट टेक्स प्लेस द डिस्ट्रक्शन थ्रू एटम बॉम्ब्स विल स्टार्ट.
तो संगम युग कल्याणकारी युग है.
सो द कॉन्फ्लुएंस एज इज द बेनिफिशियल एज.
भले इस संगम युग में ही पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है, नई दुनिया की स्थापना भी होती है, दोनों का संगम है.
दो देर इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड एज वेल एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड इन दिस वेरी कॉन्फ्लुएंस एज. इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ.
परंतु कल्याणकारी संगम युग.
हाउएवर इट इज द बेनिफिशियल कॉन्फ्लुएंस एज.
विनाश भी कल्याणकारी है.
डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो बेनिफिशियल.
अगर विनाश नहीं होगा तो नई दुनिया संसार में प्रत्यक्ष नहीं होगी.
इफ डिस्ट्रक्शन डजंट टेक प्लेस द न्यू वर्ल्ड वोंट बी रिवील्ड इन द वर्ल्ड.
500-700 करोड़ जो ध्वंसकारी आत्माएं इस सृष्टि पर फैली हुई है उनके वाइब्रेशन, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति संसार में जब तक व्याप्त है तब तक हम मुट्ठी भर ब्राह्मण अपने वाइब्रेशन से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते.
द 5-7 बिलियन डिस्ट्रक्टिव सोल्स हु आर स्प्रेड इन द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज देयर वाइब्रेशंस एंड दृष्टि आर स्प्रेड इन द वर्ल्ड वी अ हैंडफुल ऑफ ब्राह्मण्स कांट ब्रिंग अबाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आर वाइब्रेशंस.
हम एक तरफ वाइब्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ हुजूम का हुजूम वाइब्रेशन को खराब कर देता है.
ऑन वन साइड वी ट्राई टू रिफॉर्म वाइब्रेशंस एंड ऑन द अदर साइड द क्राउड ऑफ इम्प्योर सोल्स स्पॉइल्स द वाइब्रेशंस.
तो विनाश होना भी जरूरी है.
सो द डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी.
और धर्म पिताओं ने अपने अपने धर्म की स्थापना की है.
अदर रिलीजियस फादर्स हैव एस्टैब्लिश्ड देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स.
पुरानी कुरीतियों का विनाश नहीं किया, पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं किया.
दे डिडंट डिस्ट्रॉय द ओल्ड मिसकंडक्ट द ओल्ड ट्रेडिशंस.
ये तो एक ही परमपिता परमात्मा है जो तीन मूर्तियों के द्वारा स्थापना भी करता है तो विनाश भी करता है.
देयर इज द वन सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल अलोन हु डज द एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज द डिस्ट्रक्शन थ्रू द थ्री पर्सनैलिटीज.
और जब पुरानी सृष्टि का विनाश हो जाता है तो जो श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बचता है उसके द्वारा पालना होती है.
इन एडिशन व्हेन द ओल्ड वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड द सस्टेनेंस टेक्स प्लेस थ्रू द गैदरिंग ऑफ द एलिवेटेड सोल्स दैट इज लेफ्ट.
इसके द्वारा पालना होती है वो स्थापनाकारी और विनाशकारी का कॉम्बिनेशन, उसे कहा जाता है विष्णु.
द वन थ्रू होम द सस्टेनेंस टेक्स प्लेस is the combination of the establisher and the destroyer. He is called Vishnu.
तो संगम पर बाप आए करके सत्यु की दुनिया बनाते.
So the father comes in the confluence age and establishes the golden age world.
तो अब देखो तुम्हारा कितना कल्याण होता है.
Now look, you have benefited so much.
करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है.
You don't have to do anything. You just have to remember the father and the inheritance.
ऐसा करने से तुम्हारी कितनी कमाई होती है.
You earn so much by doing this.
कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है.
It is earning as well as health.
क्योंकि याद से आत्मा पावरफुल बनती है.
It is because the soul becomes powerful through remembrance.
आत्मा जब पावरफुल बनती है तो जन्म जन्मांतर के लिए शरीर भी स्वस्थ बन जाता है.
When the soul becomes powerful, the body also becomes healthy for many births.
तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है.
You gain good health.
तुम्हारा जीवन अमर बन जाता है.
Your life becomes immortal.
सत्युग में लंबी आयु होगी.
In the golden age, you will have a long life.
और कलयुग में आयु छीण हो जाती है.
एंड द लाइफ शॉर्टन्स इन द आयरन एज.
क्या कारण होता है.
व्हाट इज द रीजन.
जो लंबी आयु होती है उसका मूल कारण है कि जो सर्वशक्तिमान बाप है उसकी याद समाई जाती है श्रेष्ठ आत्माओं में.
द मेन रीजन ऑफ हैविंग अ लॉन्ग लाइफ इज दैट The elevated souls have the remembrance of the Almighty Father.
और कलयुग में आयु छीण हो जाती है क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप सर्वव्यापी मान लिया जाता है.
And the life shortens in the iron age because the Almighty Father is considered to be omnipresent.
सर्वव्यापी हो जाएगा तो ताकत किससे, सर्वव्यापी से लेंगे क्या.
If he is omnipresent, from whom will you receive power? Is it from the one who is omnipresent?
सर्वव्यापी मानने से बुद्धि एकाग्र होगी क्या.
Will your intellect concentrate if you consider him to be omnipresent?
इसमें भी व्यापक, उसमें भी व्यापक, उसमें भी व्यापक, कणकण में व्यापक.
He is present in him, this one as well as that one. He is present in every particle.
तो बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र हो जाएगी.
So, will your intellect scatter or concentrate?
बिखर जाएगी.
It will scatter.
तो कलयुग के अंत में बुद्धि बिखर जाती.
So, your intellect scatters at the end of the iron age.
शक्ति छीन हो जाती है आत्मा की.
The power of the soul decreases.
बाप आकर असली बात बताते हैं.
The father comes and tells us the true fact.
कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ.
I am not omnipresent.
मैं तो एक व्यापी हूँ.
आई एम सर्टनली एक व्यापी.
और जहाँ एक व्यापी हूँ उस एक को पहचानना पड़े.
एंड यू नीड टू रिकॉग्नाइज द वन इन होम आई एम एक व्यापी.
वो एक कौन है,
as to who that one is.
तथा कथित ब्राह्मण कह देते हैं वो एक बिंदु है.
The so-called Brahmin say he is a point.
अरे बिंदु तो कीड़े मकोड़ों की आत्मा भी बिंदु है.
अरे the souls of insects and spiders are also points.
पशु पक्षियों की आत्मा भी बिंदु है.
The souls of animals and birds are also points.
कौन से बिंदु को याद करना है, पता कैसे चलेगा?
How will you come to know which point you have to remember?
वो बिंदु की पेक्युलैरिटी का कैसे पता चले?
How will you come to know about the peculiarity of that point?
व्यक्तित्व का पता कैसे चले?
How will you come to know about that personality?
तो ज्ञान के आधार पर उसे व्यक्तित्व का पता बताया जाता है.
So, the address of that personality is mentioned on the basis of the knowledge.
परिचय दिया जाता है.
His introduction is given.
वो परिचय जब आत्मा को हो जाता है,
when the soul receives his introduction,
तो आत्मा नर से नारायण जैसी बनती है.
He becomes like Narayan from a man.
इसलिए मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना.
This is why it has been said in the Murli, the best purushart is to remember Narayan.
Kya?
What?
Kyun?
Why?
Shiv Baba ko yaad nahi karna?
Don't you have to remember Shiv Baba?
Hai? Jo Narayan hai, usi mein to Shiv Baba samay gaya.
In fact, Shiv Baba is merged in Narayan himself.
Woh to is srishti par sada kal hai. कायम होता है.
He alone is always present in this world.
इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज कायम नहीं होती है.
Nothing is present forever in this world.
सिर्फ एक ही आत्मा इस सृष्टि पर सदाकाल कायम रहती है, जिसमें मुकर्रर रूप से परमात्मा से संगम युग में प्रवेश करता है.
There is only one soul who is always present in this world. The supreme soul Shiv enters in permanently in the confluence age.
तो तुम्हारा जीवन अभी अमर बनता है.
So your life becomes immortal now.
तुम्हारा कब अकाल मृत्यु नहीं होता.
You never die an untimely death.
तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई.
So the children should be very happy thinking the entire knowledge has come in our intellect.
हाँ, यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर प्रदर्शनी पर समझाने के लायक बनना.
Yes, when you children come here, make पुरुषार्थ and become worthy to explain to others in the exhibition.
अपन को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठ करके सीखो.
Learn for 7-8 days in order to make yourself worthy.
प्रैक्टिस हो जाए और झट भागे सर्विस पर.
When your practice is complete, run immediately for service.
सर्विस करके फिर लौट आए. ये सीखना तो बड़ा सहज है.
You should return again after doing service. It is very easy to learn this.
चित्र को सामने देखने से बुद्धि में आ जाता है कि ये संगम युग पर बैठे हैं.
When you see the picture in front of you, it comes in your intellect. We are sitting in the confluence age.
आज दुनिया में बहुत मनुष्य हैं.
There are many people in the world today.
और कल की दुनिया में बहुत थोड़े होंगे.
Whereas there will be very few people in the forthcoming world.
कितने बहुत मनुष्य हैं आज की दुनिया में.
How many people are present in today's world?
500-700 करोड़.
5 to 7 billion.
और कल की दुनिया में कितने होंगे?
एंड हाउ मेनी पीपल विल बी इन द फोर्थ कमिंग वर्ल्ड?
500-700 करोड़ का सातवां हिस्सा भी नहीं.
नॉट इवन द सेवेंथ पार्ट ऑफ 5 to 7 billion.
100 करोड़ हों वो भी नहीं होंगे.
इट इज इन दैट देयर विल बी 1 billion सोल्स. नॉट इवन दोस मेनी सोल्स विल बी प्रेजेंट देयर.
100 करोड़ का 100वां हिस्सा 1 करोड़ भी नहीं होंगे नई दुनिया में.
देर वोंट बी इवन 100th पार्ट ऑफ 1 billion, दैट इज 10 million इन द न्यू वर्ल्ड.
1 करोड़ का 10वां हिस्सा दस लाख भी नहीं होंगे.
There won't be the tenth part of 1 billion, that is 1 million either.
नई दुनिया में कितने होंगे?
How many souls will be present in the new world?
सिर्फ 9 लाख होंगे.
There will be only 900,000 souls.
तो कहाँ 9 लाख और कहाँ 750 करोड़ मनुष्य आत्मे?
So there is a vast difference between 900,000 and 5 to 7 billion human souls.
इतनी सब आत्माएं वापस चली जाएंगी.
All these souls will return.
कहाँ वापस चली जाएंगी?
Where will they return?
शांति धाम में शांत होकर के जाके बैठेंगे.
They will become silent and sit silently in the abode of peace.
जो वापस चली जाएंगी वो इस सृष्टि पर रहने के काबिल नहीं होंगी. जो नई सृष्टि परमात्मा बनाने के लिए आता है.
Those who return won't be worthy of living in this world. That is the new world that the Supreme Soul establishes when he comes.
अब बाप स्वयं आए हैं.
Now the father himself has come.
बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं?
He respects the children so much.
सारी दुनिया को शांति धाम बैठाए देते हैं और बच्चों को सुख धाम में बैठाते हैं.
He makes the entire world sit in the abode of peace and the children in the abode of happiness.
कहते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए.
It is said the resident of a far off land has come in a foreign land.
रावण का देश ये पराया देश है ना?
Ravan's land is a foreign land, isn't it?
अपने देश में नहीं आया हुआ है.
He hasn't come in his land.
रावण के देश में आया हुआ है.
But in Ravan's land.
हाँ, राम के देश में तो कब रावण आ नहीं सकता.
Yes, Ravan can never come in Ram's land.
रावण के देश में राम आता है, शिव आता है, लेकिन राम के देश में रावण नहीं आ सकता.
Ram comes, Shiv comes in Ravan's land, but Ravan can't come in Ram's land.
कहाँ है राम का देश? है? सत्यगो त्रेता.
Where is Ram's land? Students, the golden age, the golden and silver age.
सत्यगो त्रेता है राम राज्य.
The golden and the silver age is Ram's kingdom.
और द्वापर कलयुग है? रावण.
And the copper and iron age is Ravan's kingdom.
तो द्वापर कलयुग रावण राज्य में राम और राम के भांति आते हैं.
So Ram and his family members come in the copper and the iron age, that is Ravan's kingdom.
लेकिन सत्युग त्रेता जहाँ राम का देश है, राम का राज्य है, वहाँ रावण के भांति प्रवेश नहीं कर सकते.
However, Ravan's family members can't enter the golden and the silver age, that is Ram's land, Ram's kingdom.
इस पर एक कहानी भी बनी हुई है. कथा सुनाते हैं ना?
There is also a story about it. They narrate the story, don't they?
वो है सब कहानियाँ.
They are all stories.
कहानी में कोई सार नहीं है, न कथाओं में कोई सार है.
There isn't any essence in the stories or tales.
Novels भी देखो कितने ढेर बनते हैं.
Look, many novels are also written.
ये जो novels लिखने वाले होते हैं ये करोड़पति बन जाते हैं.
The writers of these novels become billionaires.
लाखों रुपया कमाते हैं.
They earn millions.
यहाँ इंडिया में तो लाखों कमाते हैं और विलायत में तो करोड़ों कमाते होंगे.
Here in India they earn millions, whereas in foreign lands they probably earn billions.
ये कथाएं सुनाने वाले भी सन्यासी गुरु गोसाई आदि होते हैं.
In addition, the sannyasis, gurus and holy men are the ones who narrate these stories.
उनके पास भी बहुत पैसे होते हैं.
They also have a lot of money.
वो अपने सन्यास धर्म की संभाल रखते हैं.
They look after their sannyas religion.
अब तुम्हारी डोरी बाप के हाथ में आ चुकी है. काहे की डोरी?
Now your string has come in the father's hand. Which string?
तुम्हारी कौन सी डोरी बाप के हाथ में आ चुकी है?
Which of your strength has come in the father's hand?
बुद्धि की डोरी बाप के हाथ में आ चुकी है.
The string of your intellect has come in the father's hand.
बस तुम ही सिखाऊं, तुम ही से बैठूं.
That's it. I will eat with you alone, sit with you alone.
तुम्हारे भंडारे से भरपूर हो जाऊं.
And I will be satiated by eating out of your store.
जो मन से समझते हैं ये सब कुछ ईश्वर बाप का है, मैं ट्रस्टी हूँ.
People think all this belongs to God the Father. I am a trustee.
हम श्रीमत पर चलकर सब कुछ करते हैं.
We follow Srimad and do everything.
जो समझते हैं वो भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं.
Those who think this also eat from Shiv Baba's store.
Shiv Baba ke bhandare se khane se hriday shuddh hota hai.
Your heart becomes pure by eating from Shiv Baba's store.
Aise nahi ki wo Shiv ke bhandare se nahi khate hain.
It isn't that they don't eat from Shiv's store.
Kaun?
Who?
Jo ghargast mein rehte hain. धंधा दोरी भी करते हैं और अपन को ट्रस्टी समझते हैं.
Those who stay in the household path as well as do occupation and business and consider themselves to be a trustee.
ट्रस्टी माना?
What does a trustee mean?
ये सब कुछ बाप का है.
Everything belongs to the father.
तो बाप हर बात में राय देते हैं. इतने में खाओ, इतना इकट्ठा करो.
So the father gives the direction for everything. Eat out of this much, collect this much.
जो मिलता रहेगा सो ठीक है.
Whatever you continue to receive is enough.
ऐसे direction पर चलने वाले भी जैसे भंडारे से खाते हैं.
Those who follow the directions this way, it is like they also eat from his store.
उनको बल मिलता है. इस भंडारे से खाया, भंडारा भरपूर, कालकंटक सब दूर.
They receive power. If you eat from his store, Shiva's store is full. Death and obstacles will stay far away from you.
इसके बाद तुम कब अकाल मृत्यु को नहीं पावेंगे.
You will never die an untimely death after this.
इस समय शिव बाबा आते हैं.
Shiv Mama comes at this time.
इनकी महिमा भी गाई हुई है.
He has also been praised.
Shivratri manate hai na?
They celebrate Shivratri, meaning Shiva's night, don't they?
Parantu unka bhandara kaise hota hai? Ye koi nahi jante.
However, no one knows how his storehouse is.
Barobar baap abhi sangam yug par aate hain.
The father certainly comes now in the confluence age.
बच्चे भी आते हैं.
The children also come here.
उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है.
They receive food from Shiv Baba's storehouse.
इनको?
Who?
बच्चों को शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है.
The children receive food from Shiv Baba's storehouse.
कोई अच्छा मेल सरेंडर होता है तो ठीक है.
If a good man surrenders himself, it is good.
अगर वो सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करेंगी.
If he doesn't surrender himself, what will the mothers do?
क्योंकि कमाई है पति की.
It is because it is the husband who earns.
पति तो सरेंडर होता नहीं.
And the husband certainly doesn't surrender himself.
वो तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए.
When he earns, it is then that his wife will eat.
तो उनको नहीं मिल सकता. इनको?
So he can't get it. Who?
पति को.
The husband.
क्योंकि वो सरेंडर बुद्धि होता नहीं.
It is because he doesn't surrender his intellect.
हाँ, जो जोड़ा सरेंडर है तो शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है.
Yes, the couple who surrender themselves can be sustained from Shiv Baba's storehouse.
ये बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं.
The father explains this to the children nicely.
बुद्धि में ये ज्ञान रखना है कि हम बाप के पास बैठे हैं।
यू हैव टू कीप दिस नॉलेज इन योर इंटेलेक्ट दैट यू आर सिटिंग नियर द फादर।
जब तक कर्मातीत अवस्था को ना पावे तब तक बाप के पास बैठे रहना।
Until you have attained the karmatik stage, you have to sit near the father.
दिन प्रतिदिन अपने स्वराज के नजदीक आते जाते हैं।
You keep coming closer to your self sovereignty day by day.
हमारा समय बीतता जाता है।
Our time continues to pass.
और तुम नजदीक आते जाते हो।
And you keep coming closer.
सतयुग का पहला चरण बीता।
The first stage of the golden age has passed.
फिर अब कितना कहेंगे?
Then, how much will it be said now?
देखो कितना नजदीक आ गए।
Look, how close you have come.
अभी बाप कहते हैं बच्चे, अभी तुम्हारा 84 का चक्कर पूरा होता है।
Now the father says, children, your cycle of 84 births completes now.
तुमने अपने 84 के चक्कर को जान लिया है।
You have come to know about the cycle of your 84 births.
चक्कर को देखने से ही कहेंगे हम अपने संगम पर बैठे।
You will say, just by looking at your cycle, we are sitting in our confluence age.
उस तरफ है कलयुग और इस तरफ है सतयुग।
There is the iron age on that side and the golden age on this side.
कल हम अपने सुखधाम में रहेंगे।
Tomorrow we will live in our abode of happiness.
दुनिया को इस बात का पता ही नहीं है।
The world doesn't know about it at all.
तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है।
They are certainly in pitch darkness.
वेद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं।
We make the earning of 21 births from the unlimited garden.
क्या?
What?
हम करते हैं।
We make it.
वे नहीं करते।
They don't make it.
वे माना कौन?
Who are they?
दूसरे धर्म वाले?
नहीं करते।
वो 21 जन्म की कमाई बाप से नहीं करते।
Those belonging to other religions don't make an earning from the father for 21 births.
और हम 21 जन्म की कमाई बाप से करते।
And we make an earning from the father for 21 births.
हमको बाप के द्वारा 21 जन्मों का वर्षा मिलता है।
We receive the inheritance of 21 births from the father.
जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनको 20 जन्म का मिलेगा।
Those who convert to other religions receive the inheritance of 20 births.
21 जन्म का नहीं मिलता है।
They don't receive it for 21 births.
कम जन्मों का मिलता है। क्यों?
They receive it for less number of births. Why?
क्योंकि उन्होंने एक बाप की मत को छोड़ करके दूसरों की मत को बीच बीच में अपनाया।
इट इज बिकॉज दे लेफ्ट द डायरेक्शंस ऑफ द वन फादर एंड अडॉप्टेड द ओपिनियंस ऑफ अदर्स एट इंटरवल्स।
इसलिए उनका वर्षा कम हो जाता है।
दिस इज व्हाई देयर इनहेरिटेंस लेसन्स।
सदा सुख शांति का वर्षा तो बाप ही दे रहे
हैं। फादर हिमसेल्फ इज गिविंग यू द इनहेरिटेंस ऑफ कॉन्स्टेंट हैप्पीनेस एंड पीस।
तो तुम बच्चों की ये खुशी रहती है ना?
So you children have this happiness, don't you?
स्वर्गवासी बनना ये भी तुम्हारी तकदीर में है।
To become the residents of heaven is in your fortune.
क्या?
What?
और जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं वो स्वर्गवासी पक्के देवता नहीं बनते, 84 जन्म नहीं लेते।
Those who convert to other religions don't become the residents of heaven, the firm deities. They don't have 84 births.
स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है।
Heaven is a wonderful thing.
जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं।
For example, 7 wonders are shown.
यह तो सबसे बड़ा वंडर है।
This is the biggest wonder.
क्या?
What?
दुनिया का सबसे बड़ा वंडर कौन सा होगा?
What would be the biggest wonder of the world?
स्वर्ग।
Heaven.
नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ।
I give you the inheritance of heaven amidst hell.
वो 7 wonders मनुष्यों के बनाए हुए।
those seven wonders were made by human beings.
और ये ईश्वरीय वंडर है जो ईश्वर के द्वारा तैयार होता है.
एंड दिस इज द ईश्वरीय वंडर मेड बाय गॉड.
चित्र भी बने हुए हैं.
द पिक्चर्स आर ऑल्सो प्रिपेयर.
वंडरफुल स्वर्ग के ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे.
दीज लक्ष्मी नारायण वर द मास्टर्स ऑफ द वंडरफुल हेवन.
इसलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का और नीचे में चंद्रवंशी का चित्र दिखाओ.
This is why Baba had written, show the pictures of the Suryavanshis above and the picture of the Chandravanshis below.
Suryavanshi upar aur Chandravanshi niche. Kaun se chitra mein?
The Suryavanshis above and the Chandravanshis below. In which picture?
Yo Shashti Chakra ka chitra hai. Usme Suryavanshiyon ka rajya aur Treta mein चंद्रवंशियों का राज्य.
इन द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा वील शो द किंगडम ऑफ द सूर्यवंशीज इन द गोल्डन एज एंड द किंगडम ऑफ द चंद्रवंशीज इन द सिल्वर एज.
तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा.
देन हाफ ऑफ द साइकिल विल बी कम्प्लीट.
राम सीता को ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल इतना बड़ा नहीं बनाना है.
यू डोंट हैव टू मेक राम एंड सीता एज बिग एज लक्ष्मी एंड नारायण.
क्या कहा?
वॉट वॉज सेड?
राम सीता को छोटा बनाना है और लक्ष्मी नारायण को बड़ा बनाना है.
यू हैव टू मेक राम एंड सीता स्मॉल एंड लक्ष्मी एंड नारायण बिग.
क्यों?
व्हाई?
क्यों बनाना है बड़ा?
व्हाई डू यू हैव टू मेक देम बिग?
क्योंकि उन्हें दैवी गुण ज्यादा थे.
इट इज बिकॉज दे हैड मोर डिवाइन वर्च्यूज.
16 कला संपूर्ण थे. सर्वगुण संपन्न थे.
दे वर कम्प्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज एंड कम्प्लीट विद ऑल द वर्च्यूज.
राम की दो कलाएं कम हो जाती.
टू सेलेस्टियल डिग्रीज ऑफ राम डिक्रीज.
लक्ष्मी नारायण का चित्र है वैसे राम का भी राम सीता का भी बनाना है.
यू हैव टू मेक द पिक्चर ऑफ राम एंड सीता द वे देयर इज द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी एंड नारायण.
वो सूर्यवंशी है वो चंद्रवंशी है.
दे मीनिंग लक्ष्मी नारायण आर सूर्यवंशी वेयर एज दे मीनिंग राम सीता आर चंद्रवंशी.
जब सत्युग 1250 वर्ष का था तो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं.
व्हेन द गोल्डन एज वाज ऑफ 1250 इयर्स द क्वेश्चन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स डजंट अराइज एट ऑल.
राम की डायनेस्टी इतना समय.
द डायनेस्टी ऑफ राम कंटिन्यूड फॉर दिस लॉन्ग.
ये बातें अलग चित्र में भी समझाई जा सकती है.
यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट इन अ डिफरेंट पिक्चर.
बाबा भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाने के ऑर्डर देते रहते.
बाबा कीप गिविंग द ऑर्डर टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर.
परंतु इस गवर्नमेंट की राजाई नहीं है.
हाउएवर इट इज इन द रूल ऑफ दिस गवर्नमेंट.
कौन सी गवर्नमेंट की?
विच गवर्नमेंट?
ईश्वरीय गवर्नमेंट की.
द ईश्वरीय गवर्नमेंट.
अभी ईश्वरीय गवर्नमेंट की कोई राजाई नहीं है.
नाउ द ईश्वरीय गवर्नमेंट इज नॉट रूलिंग.
अभी हम सब सेवाधारी.
वी ऑल आर सर्विसेबल नाउ.
सेवाधारियों को कोई के ऊपर राजाई ऑर्डर नहीं चलाना है.
द सर्विसेबल वन शुडंट रूल और ऑर्डर एनीवन.
ऐसे नहीं कि हम ऑर्डर देवे तो तुरंत बन जावे.
इट इज इन दैट इफ वी ऑर्डर इट विल इमीडिएटली वर्क.
राजा ने तो ऑर्डर देते थे और तुरंत कोई ने काम न किया तो उनको जेल में डाल देते थे.
द किंग्स यूज्ड टू ऑर्डर एंड इफ समवन डिडंट इमीडिएटली परफॉर्म दैट टास्क ही वाज पुट इनटू प्रिजन.
यहाँ तो ऐसे नहीं हो सकता.
दैट कांट हैपन हियर.
ये चित्र बन सकते हैं.
दीज पिक्चर्स कैन बी मेड.
परंतु इतने विशाल बुद्धि सर्विस करने वाले बच्चे अभी हैं नहीं.
However, there aren't such broad-minded, serviceable children now.
कौन सा चित्र बनाने के लिए बोला?
Which picture did he ask to prepare?
पहले तो त्रिमूर्ति का चित्र बनाने के लिए ही बोला.
First, he asked to prepare the very picture of the त्रिमूर्ति.
क्या बोला?
What did he say?
ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है. एक्यूरेट नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट बनाना चाहिए।
दिस पिक्चर ऑफ द त्रिमूर्ति इज इंट एक्यूरेट, यू शुड मेक द एक्यूरेट पिक्चर ऑफ त्रिमूर्ति।
ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का एक्यूरेट चित्र क्यों न बनावे?
Why not prepare the accurate picture of Brahma, Vishnu and Shankar?
तो एक्यूरेट कोई जाने तब तो बनावे।
So, someone will prepare it accurately only when he knows them accurately.
और जानने के बाद भी माने पूरा पूरा तब बनावे। जाने भी माने भी और उनके बताए हुए तौर तरीकों से चले भी तो बनाने की अथॉरिटी रख सकता है।
इन एडिशन ही विल प्रिपेयर इट ओनली व्हेन ही एक्सेप्ट्स देम कम्प्लीटली इवन आफ्टर नोइंग देम। ही शुड नो एक्सेप्ट एज वेल एज फॉलो द मेथड्स टोल्ड बाय देम, देन ही कैन हैव द अथॉरिटी टू प्रिपेयर इट।
तो किसी में इतनी ताकत हो तो क्या नहीं बन सकता है?
सो इफ समवन हैज सो मच पावर व्हाट कांट ही बिकम?
तुमको तो इतनी विश्व की बादशाही मिलती है।
इन फैक्ट यू रिसीव द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड।
तो पदमों का खर्चा होना चाहिए।
सो देयर शुड बी द एक्सपेंडिचर ऑफ मल्टी मिलियन।
उस गवर्नमेंट का इतना खर्चा होता है जो बात मत पूछो।
That government spends so much, they don't even ask about it.
उनके बाहुबल में कितना खर्चा होता है?
They spend so much for their physical power.
दुनिया की जो governments हैं, चाहे रूस की हो, अमेरिका की हो, लंदन की हो, यूरोपीय governments हो, वो अपनी security में कितना खर्चा करती है?
As regards the governments of the world, whether it is the government of Russia, America, London or the European governments, they spend so much for their security.
बाहुबल में देखो कितना खर्चा होता है।
Look, they spend so much for बाहुबल।
एटम बम बनाने में, मिसाइल बनाने में, मिलिट्री तैयार करने में, एरोप्लेन बनाने में कितना खर्चा करते हैं?
They spend so much for preparing atom bombs, missiles, making a military ready and making aeroplanes.
ये सब है उनका बाहुबल।
All this is their बाहुबल।
और तुम तो योगबल से राजा ही लेते हो।
Whereas you take the kingship through योगबल।
तुम्हारा खर्चा कितना आता है योगबल में?
How much do you spend on योगबल?
खर्चा पाई पैसे का भी नहीं।
You don't spend even a पाई पैसा, meaning something least valuable for it.
Baba to kehte hai ek kamre mein Gita paathshala khol do.
In fact, Baba says, open a Gita paathshala in just one room.
Usi mein khana banao, usi mein so jao, usi mein safai karke class laga lo.
Cook, sleep, clean and conduct the class in the same room.
To koi kharcha pani hai kya? Kuch bhi nahi.
So, does it involve any expenditure? Nothing at all.
यह खर्च की बात ही नहीं।
Here, there is no question of spending money at all.
खर्चा यहाँ होता ही नहीं।
You don't spend anything here at all.
यहाँ शुरू से लेकर अंत तक 50 लाख भी खर्चा नहीं होता। ये क्या कह दिया?
Here, you don't even spend 5 million from the beginning till the end. What did we say?
10-10 लाख का तो एक एक मेगा प्रोग्राम हो रहा है।
Each mega program is of 1 million each.
है? तो ये क्या कह दिया कि 50 लाख भी खर्चा नहीं होता?
So, what was this said? That you don't even spend 5 million?
हाँ।
Student, it isn't about there. Yes.
वो जो 10-20 लाख खर्च करते हैं वो तो दूसरी गवर्नमेंट है।
दे हु स्पेंड 1-2 million बिलोंग टू द अदर गवर्नमेंट।
क्या?
वॉट?
उनका तो झंडा ही निराकार का है।
दे वेरी फ्लैग कंसिस्ट द इनकॉर्पोरियल वन।
हमारा झंडा कौन सा है?
विच इज अवर फ्लैग
है? हमारा त्रिमूर्ति का झंडा है, हमारा तो त्रिमूर्ति का झंडा अब शुरू हुआ है।
अब फ्लैग इज ऑफ द त्रिमूर्ति, अब फ्लैग ऑफ त्रिमूर्ति है स्टार्टेड नाउ।
अभी खर्चे की तो बात ही नहीं है।
इट इजंट अबाउट एक्सपेंडिचर नाउ एट ऑल।
गीता पाठशालाओं में क्या खर्चा होता है?
What is the expenditure of the Gita Pathshalas?
हमारा जब संगठन तैयार होगा, गवर्नमेंट तैयार होगी, तो 50 लाख से भी ज्यादा खर्चा नहीं आएगा।
When our gathering is ready, our government is ready, the expenditure will be no more than even 5 million.
खर्चा होता ही नहीं।
There isn't any expenditure at all.
ये बाप और बच्चों का हिसाब है।
This is the account of the father and the children.
इसमें खर्चे की तो बात ही नहीं।
There isn't any expenditure in it at all.
यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश होकर के रहते हैं।
Children come and are refreshed here.
इसलिए मकान आदि बनाने पड़ते हैं।
This is why he has to build buildings etc.
बच्चों का ही पैसा है, बच्चे ही आकर रहते हैं।
It is the children's money and they themselves come and stay here.
कितने दिन पास हो गए?
So many days have passed.
बाकी थोड़े दिन बचे हैं।
Few days are left.
खर्चा आदि कुछ भी नहीं है।
There isn't any expenditure etc.
तुम बच्चे जीवन मुक्ति पाते हो। बिना कौड़ी खर्चे के।
You children receive जीवन मुक्ति without spending a kauri.
इसमें सिर्फ मेहनत है याद और सेवा की।
The only hard work involved in it is of remembrance and service.
भगवान को तो सभी भक्त याद करते हैं।
All the devotees certainly remember God.
परंतु वो भक्त ये नहीं जानते कि भगवान कौन है।
However, those devotees don't know who God is.
भगवान को न जानने के कारण फिर बहुतों को भगवान मान लेते।
Because of not knowing God, they consider many people to be God.
तक्षावतार, मच्छावतार, भित्तर भित्तर सब में भगवान समझ लेते।
They consider God to be present in everything, in thikkar, भित्तर, the incarnation of a turtle, the incarnation of a fish.
अब भगवान कहते हैं रूप तो होते नहीं।
Well, God certainly doesn't have so many forms.
कहते भी हैं पतित पावन आओ।
They also say, O purifier of the impure ones, come.
जब कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो पतित पावन आकर के पावन बनावेंगे ना।
When they say, O purifier of the impure ones, come, he will come and purify others, won't he?
काहे के लिए बुलाते हैं?
Why is he called?
पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाते हैं।
He is called to purify the impure ones.
ऐसे थोड़े ही कि ज्ञान सुना करके चले जाएंगे।
It isn't that he would go back after narrating the knowledge.
जैसे ब्रह्मा के तन में आए 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ के चले गए।
Just like he came in the body of Brahma, left the body and went on 18th January
1969. पतित से पावन कोई बना नहीं।
No one became pure from impure.
तो काम तो पूरा हुआ नहीं।
So the work wasn't completed.
फिर ये ज्ञान तो झूठा हो गया कि हे पतित पावन आओ।
Then this phrase, O purifier of the impure ones come, has certainly become false.
नहीं।
No.
वो चले नहीं गए।
He didn't go back.
वो एक मूर्ति के द्वारा कार्य पूरा हुआ, ब्राह्मण धर्म की स्थापना का कार्य पूरा हुआ।
His task through one personality was completed. The task of the establishment of the Brahmin religion was completed.
अभी फिर दूसरी मूर्ति के द्वारा ब्राह्मणों को बैठ करके शिक्षा दे करके देवता बनाने का कार्य करते।
Now he sits and performs the task of teaching the Brahmins and making them into deities through the second personality.
और जो ब्राह्मण सो देवता बने हैं उनको फिर विष्णु की तीसरी मूर्ति के द्वारा पालन का कार्य सौंपा जाता है.
And those who become the deities from the Brahmins are handed over the task of sustenance through the third personality, Vishnu.
Om Shanti.
Om Shanti.